kopi shekha nama meri baato se jino ab sab kishni chakno me sab kibar meri chakno bina swikar ki jiva bahut prem purvuk ab sab ne shiv thani ji ka paath kiya hai karte raha ki jiva ek baar nahi din mein anek baar kiya ja sakta hai jitna karo lab hi lab hai कुछ मिले ना मिले इस बात की चिंता नहीं, शांति तो मिलेगी, खोज तो इसी की है, चाहिए तो शांति, बाकी सब कुछ तो है, शांति नहीं है। पैसा भी है, बगीचे भी हैं, मकान गाड़ियां इत्यादि सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। जो करने से शांति मिलेगा करना चाहिए, अंतवाणी का पाठ करने से, दिन में अनेक बार पाठ करने से शांति का अनुभव होता है, जरूर किया कीजिएगा, प्रेम पूर्वक किया कीजिएगा। कोई बंधन नहीं, खाली पेट करना है खा के कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना नहाए कीजिएगा, आप पवित्र हैं अपवित्र हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वामी जी महाराज ने इन सब बातों का खत्म कर दिया है, अडंबर की बातें हैं, सब बातों से निकाल दिया है हमें। पाठ कीजिए। पिछले रविवार चर्चा की जा रही थी, आपसे निवेदन किया जा रहा था, मेहरबानी करके मन को इस प्रकार से सिखाइएगा, कठिन काम है देवी सज्जनों, इतना आसान नहीं। आप सबसे अर्ज की थी, स्नात में भी अर्ज की थी, यहां भी अर्ज की थी, मन को इस प्रकार से सिखाइएगा कि ये काम काज करते हुए हर वक्त मुख से राम राम, मन से राम राम जपता रहे। सोमदेव इन बच्चों को बाहर निकालो, अगले रविवार से इन बच्चों को नहीं बैठाना, उठो बेटा यहां से, चलो आप बाहर उठो, इसके पिछले को भी उठाओ, आप भी चलो बेटा। बाकी बच्चे बेटा आराम से बैठना, मन को इस प्रकार से सिधाइएगा, हर वक्त राम स्मरण करता रहे, जब के साथ साथ स्मरण भी हो। क्यों कहा गया था इस प्रकार से, क्यों आपसे ये विनती की गई थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, अंत समय जो मेरा स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर तो राम राम न करें, स्मरण न करें और उस वक्त आपको राम स्मरण आ जाए, ये इतना आसान नहीं। जिंदगी भर स्मरण करेंगे तो भी उस वक्त राम राम याद आ जाए तो समझिएगा आपने बाजी मारी, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, इतना आसान काम नहीं है। अतः जब आपसे निवेदन किया जाता है कि आप नित्य निरंतर सतत राम 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 जपते रहिएगा, साथ ही साथ जिनका नाम है उन्हें याद कीजिएगा, संसार को नहीं। अभी आपने भजन सुना, प्रेम बिना फिरती नहीं माला हरि के नाम की, जहां प्रेम होगा उसी की माला फिरेगी, संसार से प्रेम है तो माला संसार की फिरेगी, राम की माला फेरना चाहते हो तो आपका प्रेम राम से ही होना चाहिए, संसार से नहीं, संसारिक वस्तुओं से नहीं। पिछले रविवार को आपने एक उदाहरण देखा था, एक साधु, संत महात्मा अच्छे साधु थे, जिंदगी भर पैसे को हाथ नहीं लाया, छुआ नहीं उसको, क्या हालत हुई थी। अपने मुख से कहते हैं, मेरी सूरत अंत समय जिस वक्त मैं मरने को तैयार था, मेरी सूरत उस पैसे में चली गई थी, अपनी कुटिया में चली गई थी, इसलिए यमराज ने मुझे यहीं पर भूत बना के तुम भेजा है। शिष्य कह रहे हैं, बस जो मेरे लिए 20 रुपये तुमने गाड़े थे खड्डे में, उनको उखाड़ निकाल उनको, और किसी सत्कर्म के लिए उसको उपयोग कर तो मेरा कल्याण होगा। ये बातें भयभीत करने के लिए नहीं, ये बातें सत्य हैं, ये बातें सत्य हैं तो सत्य को हमें स्वीकारना चाहिए कि कितना कठिन काम है। अतएव एक साधक को बहुत सावधानी से अपना जीवन यापन करना चाहिए, दिनचर्या बहुत सावधानी पूर्वक व्यतीत होनी चाहिए। रुपये पर ध्यान दिया, अंत समय कुटिया पर ध्यान दिया, परमेश्वर को कितना दुख होता होगा इस बात पर, जिंदगी भर इसने राम राम जपा है, अंत समय उसे छूट नहीं सका, अभी भी कहीं ना कहीं इसकी वासना अंदर छिपी रही जिसके कारण इसको ये याद आया। बड़ा गंभीर है साधक जनों, ये वासना मोह जिसे कहा जाता है बहुत गंभीर है, छोड़ता नहीं है। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े संत महात्मा फेल हो जाते हैं। देखें आगे, ये तो धन की बात थी, संपत्ति की बात थी। संत महात्मा फरमाते हैं संपत्ति जिसको याद आती है अंत समय उसे परमात्मा भूत बनाता है, भूत की योनि देता है। ये भी एक योनि, जैसे और योनियां हैं, भूत भी एक योनि है, प्रेत भी एक योनि है, उसे उसी जगह में छोड़ देता है। आज करेंगे इस बात की भी चर्चा। धन का जो ध्यान करता हुआ मरता है, धन की याद आ गई, सारी जिंदगी पर धन कमाया है तो फिर याद आना स्वाभाविक है, धन कमाने के अतिरिक्त तो और कुछ किया ही नहीं, यही कमाई की है। नाम की कमाई की हुई होती तो नाम याद आता, धन की कमाई करी है तो फिर धन ही याद आएगा। धन जिसको याद आता है, संत महात्मा फरमाते हैं, शास्त्र फरमाता है, उसे परमात्मा सर्प की योनि देता है, नाव का नागिन बनाता है उसे, नाग देवता उसे बनाता है। इनसे बहुत बचने की जरूरत, ये मात्र कहानियां नहीं है, ये सत्य है, शास्त्र सत्य बातें हैं। आइए साधक जनों, संपत्ति की बात चल रही है तो संपत्ति की बात करते हैं। आज एक संत महात्मा 10-15 उनके साथ शिष्य है, बेचते बेचते जयपुर पहुंचे हैं, बहुत पुरानी घटना नहीं है, जयपुर राजस्थान में है, वहां पहुंचे, सूर्य अस्त होने वाला है, अंधकार छा गया है, लगभग परिचित नहीं है कहां जाए कहां ना जाए, रात कहां विश्राम करेंगे, किसी आश्रम का पता नहीं, किसी सराय का पता नहीं, किसी बात का पता नहीं, नई नई मानो जयपुर पहुंचे हैं। एक शरारती लड़का मिल गया, शरारती लड़के ने उन्हें कहा क्या रहने की समस्या है, मेरे पास समाधान है, चलो मैं आपको जगह बताता हूं। एक वीरान कोठी में ले गए, बहुत बड़ी कोठी, साथ ही बगीचा है, वह भी वीरान उजड़ा हुआ पड़ा हुआ है। कहा इस पर बहुत से कमरे हैं, आपके लिए पर्याप्त है, कोई कठिनाई की बात नहीं, इतनी सी बात कहती हो खिसक गया। संत महात्मा प्रवेश किए, देखा न द्वार है न खिड़की है न कोई कुंडी है न कुछ, तनिक आंख बंद करियो, ये तो भूत पंगा है, यह तो भूत प्रेत आत्मा का निवास है। संत महात्मा थे सो कौन कुछ बिगाड़ सकता है, अतएव कहा बच्चों जगह तो अच्छी नहीं है, हमें गलत जगह पर पहुंचा दिया गया है, वह लड़का कोई शरारती लड़का था, गलत जगह पर पहुंचा दिया है, खाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं, थोड़ी सफाई करते हैं, जैसे भी था जगह को थोड़ा साफ किया, बैठने योग्य बनाया, कोई आता नहीं था, डर के मारे, क्या हशर होता है आप सुनोगे, सफाई की, सर को बिठा लिया, अब भजन कीर्तन करते हैं, खाने को कुछ है नहीं, भूखे पेट नींद भी नहीं आएगी, भजन कीर्तन करते हैं। मध्य रात्रि का समय हुआ, मध्य रात्रि का लगभग समय हुआ तो एक विशाल विकार आकार एक प्रकट हुआ, भयभीत है, मानो हाथ जोड़े हुए संत महात्मा को साफ दिखाई दे रहा है, उसकी आकृति पूरी दिखाई नहीं दे रही है लेकिन हाथ बांधे हुए इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, महात्मन मेरा कल्याण करो, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत वर्षों से दुखी हूं, मेरा कल्याण करो। संत महात्मा ने देखा प्रेतात्मा है, अपना परिचय दो, कहा अपना परिचय दो। महात्मा ने पूछा, ये प्रेत आत्मा अपना परिचय देते हैं। कहा मैं इस कोठी का मालिक हूं, मैंने ये कोठी बनाई थी, बड़े भाव चाव से बनाई थी। उस वक्त जिस कोठी बनाई थी शायद कोई बहुत बड़ा साहूकार भी, बहुत बड़ा सेठ भी इतने पैसे खर्च करके कोठी न बना सकता। बड़े भाव चाव से प्रेम से कोठी बनाई, बगीचा साथ उतना ही सुंदर। गाहे बगाहे इसकी रेनोवेशन करता रहता, कुछ ना कुछ और नई चीज उसमें और बनाता रहता। किसी बाथरूम में टाइल्स नहीं लगी तो लगवा देता, किसी मार्बल लगवाना होता तो लगवा देता, इत्यादि इत्यादि। मानो ये सिलसिला जिंदगी भर चलता रहा। मरते वक्त हुआ मेरे बच्चे नालायक हैं, इन्होंने इसको ठीक से देखभाल नहीं करनी है। मूर्ख हैं, समझते नहीं हैं कि ऐसी कोठी, ऐसी अनमोल कोठी ये जिंदगी में कभी नहीं बना सकेंगे, ऐसी शानदार कोठी ये फिर कभी नहीं बना सकेंगे जैसी बनी हुई है। पर मेरी मृत्यु हो गई। यमराज ने मुझे कहा इसकी सूरत उसी कोठी में है, उसी बगीचे में है, इसे वही भूत बना के छोड़। मैं तब से यही सुन रही हूं देवियो, मैं तब से यही। मेरे बच्चों ने मेरा कुछ नहीं किया, रुष्ट होगा ये। जिनको पितृदोष कहते हैं ये बातें गलत नहीं है, ये बातें ठीक है। पितृ रुष्ट होते हैं, पितृ जिनका कुछ नहीं किया गया, श्राद्ध नहीं किया गया, जिनका कोई पिंडदान नहीं किया गया। मानो पीछे से बच्चों ने कुछ नहीं किया है, बाप अपने मुख से कह रहा है मेरे बच्चे नलायक निकले, इन्होंने मेरा कुछ नहीं किया, मैं क्रूर हो गया। मैं था नहीं ऐसा, मैं क्रूर हो गया। अतएव सबसे पहले मैंने अपने पौत्र पौत्रियों को खाया, मार डाला। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को मारा, पुत्रों को मारा, एक एक से मैंने बदला लिया। ये सब बातें घटित होती हैं, अभी भी होती हैं। ये मात्र कोई एक कोई बनाई हुई कंकॉक्टेड कोई स्टोरी नहीं है, ये होती है, अभी भी होती है। अभी भी लोग इस प्रकार की बातें बताते हैं मुझे आके कि हमारे साथ ऐसा घटित हो रहा है। कोई पितृ दोष तो नहीं, कोई भूत प्रेत तो आत्मा कोई इस प्रकार की हमारे पीछे तो नहीं पड़ी हुई। कितनी सख्त घटना है जिंदगी में, कईयों के साथ घटित होती है। मेरे बच्चों ने मेरा कुछ नहीं किया, मैं करोड़ हो गया। महात्मा अब जो भी यहां आता है ना उसे मार डालता हूं। वो शरारती लड़के यहां पर भेजते हैं, यात्री जो भी आते हैं उन्हें यहां भेजते हैं। मार दिया, मार दिया, मार दिया। जब ये आवाज सुनते हैं तो तालियां बजाते हैं। आपको मालूम है आपको मैं मार नहीं सकता, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत दुखी हूं, तब से दुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूं। योनि कोई अच्छी थोड़ी है, भूत प्रेत की योनि कोई अच्छी योनि थोड़ी है, दुख देने वाली योनि, स्वयं भी दुखी है औरों को भी दुख देने वाली। स्वयं दुखी है औरों को दुख देना तो मानो और दुखी होता है व्यक्ति, दुख देने वाला सुखी तो नहीं रह सकता, वह भी दुखी होगा। ये नियम है परमात्मा का। अतएव मैं तब से दुख ही दुख भोग रहा हूं, मेहरबानी करके मेरा कल्याण करो, मैं आपके सामने नहीं हो सकता। प्रेतात्मा कहती है मैं आप संत महात्मा हो, मैं आपके सामने नहीं हूं, इसलिए मैं पीछे खड़े होके अपना आकार तो मैं दिखा नहीं रहा, पर मैंने अपना परिचय आपको सही सही दे दिया कि मैं ये था ये हूं, मेरा कल्याण करो। संत महात्मा, संत महात्मा कह रही है दरिद्र का बेटा। भजन कीर्तन के बाद हम कर रहे हैं भजन कीर्तन, करते रहेंगे, तुम बैठ जाओ इधर कहीं, जहां कहीं बैठ सकता है बैठ जाओ, हमें दिखाई दे ना दिखाई दे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम भजन कीर्तन सुन। उसके बाद जो कुछ हमारे पास, बहुत कुछ खाने को नहीं, थोड़ा प्रसाद है, प्रसाद सबको देंगे, तेरे लिए भी रखेंगे। यदि तू प्रसाद ले गया तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तेरी सदगति हो गई है, यदि नहीं तो मुझे फिर कभी मिलना। संत महात्मा ने बता दिया। मैं इस वक्त इतना ही तेरे लिए कर सकता हूं, मुझे फिर कभी मिलना, मैं तेरा कल्याण करूंगा। तो एक संत की शरण में आया है, कुछ ना कुछ तुझे जरूर प्राप्त होगा, आज प्राप्त नहीं हुआ तो मुझे फिर कभी मिलना। सत्संग की समाप्ति हुई, भजन कीर्तन की समाप्ति हुई, प्रसाद नहीं था, उसका जो हिस्सा रखा था। 4-1 बजे का टाइम होगा, हाथ जोड़े हुए अब सामने आया है, महात्मन चरणों में पढ़ने दीजिएगा, आपने मेरी सदगति कर दी, आपने मेरा कल्याण कर दिया, मैं इस भूत प्रेत योनि से मुक्त हो गया। देवियों सज्जनों, ऐसे पढ़ो भूत प्रेत आपके सामने ना आ सके, ये कैसे होगा? कोई कठिन बात नहीं है, आपके पास महामंत्र है, जपिएगा इसे, राम राम जपिएगा, और आप इस प्रकार से बन जाओगे कि कोई भूत प्रेत आपके सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। जैसा इसने कहा, संत के पास क्या था? नाम की कमाई, और क्या था? तप था, नाम की कमाई थी, और तो कुछ नहीं था, तप था, त्याग था, नाम की कमाई करी हुई थी, सत्कर्मों की कमाई करी हुई थी। और भूत प्रेत इस आत्मा ने कहा, मैं तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, तेरे सामने नहीं हो सकता। ये हो गई साधकों जिनकी सूरत संपत्ति पर चली गई, उन्हें परमात्मा यमराज उन्हें भूत प्रेत की योनि देता है। आगे बढ़ते हैं। आज एक गुरु महाराज ने बंदा वैरागी का नाम आपने सुना हुआ है। बंदा वैरागी से पूछा, लक्ष्मणदास असली नाम उनका लक्ष्मणदास, लक्ष्मणदास तेरे गुरु का क्या नाम था? कहा अग्रनाथ। कहां है वो? इस गुरु ने पूछा। कहा महाराज सच्चे पातशाह उनको शीर छोड़े हुए बहुत दिन होंगे, इस वक्त तो वैकुंठ में होंगे, परमधाम में होंगे। पूछने वाले संत, पूछने वाले गुरु मुस्कुरा रहे हैं, अजीब सी मुस्कुराहट है, जैसे व्यंग भरी मानो इसे कुछ पता नहीं है। ऐसी मुस्कान मानो इसे पता कुछ नहीं है। बंदा वैरागी ने गुरु महाराज के पांव पकड़े, कहा महाराज आपकी मुस्कान के पीछे कोई रहस्य लगता है, कोई चीज आप छिपा रहे हो, क्या बात है? अरे लक्ष्मणदास, तू समझ रहा है कि तेरा गुरु कहीं वैकुंठ में बैठा हुआ है, परमधाम में बैठा हुआ है, मैं कहीं नहीं गया, मैं यही इसी आश्रम में गया। कैसे महाराज? अरे हां, मैं इसी आश्रम में ही है। देख जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, बिल का पेड़ है, बेल होती है ना जो हम खाते हैं, फ्रूट होता है बेल का, खाते हैं पीते हैं, शरबत बना के पीते हैं, ऐसे भी खाते हैं। वो फल नीचे उतार, उसे फूट, तेरा गुरु इसके अंदर कीड़ा बना बैठा है। शॉक लगा, मेरा गुरु और इसके अंदर कीड़ा। फल तोड़ा, फल तोड़ के नीचे फोड़ा, उसे कीड़ा निकला। गुरु महाराज कहते हैं, इन्हीं से पूछ क्या हुआ इनके साथ। कीड़ा कहता है, लक्ष्मणदास इसी पेड़ के नीचे था जिस वक्त मेरी मृत्यु, शरीर छोड़ने को तैयार, दृष्टि ऊपर गई, इस ऋतु का फल नहीं खाया। परमात्मा न जाने मुझे कितने जन्मों से बार बार कीड़ा बना रहा है रज के खा,
मन में कई प्रश्न होते हैं।
जब मैंने ये पढ़ी कहानी, मन में प्रश्न हुआ, जिंदगी भर राम राम जपा, अंत समय इतनी सी भूल हो गई तो क्या हो गया, मेरे मन में प्रश्न था। उत्तर मिला,
जिंदगी भर राम राम जपते हुए भी अंत समय फिर ये ख्याल चला गया कि मैंने ये फल नहीं खाया, कितनी शर्मिंदगी की बात है। कितनी शर्म की बात है,
राम राम जपते हुए भी कहीं व्यक्ति मोहग्रस्त रह जाए, कितनी बड़ी जिंदगी की हार है। तब से लक्ष्मीदास एक बार नहीं अनेक बार कीड़ा बन चुका हूं, परमात्मा मुझे इस योनि से मुक्त नहीं कर रहे, शायद अभी वो संतुष्ट नहीं है कि मैं ये फल खा खा के अभी तक पूरा तृप्त नहीं हुआ। इन गुरु महाराज को कह मेरा कल्याण करो। ये संत उच्च संत हैं, उच्च महात्मा है, इन्हें बोल मेरी सदगति करवाएं। पिछले रविवार को सदगुरु आप जी ने सुना था, राम नाम जपने से व्यक्ति सदगुणों से संपन्न होता है। राम नाम सदगुणों की खान, राम नाम जपने से व्यक्ति सदगुणों से संपन्न होता है। सदगुणों से सत्कर्म होते हैं और सत्कर्मों से सदगति होती है। सो सिंपल, याद रखोगे ना, राम राम जपने से क्या होता है, व्यक्ति सदगुणी बनता है, परमात्मा अपने गुण उसे देता है। अरे जप रहे हो नाम, कमाई कर रहे हो, तो मैं कुछ दूंगा ना आपको, मैं अपने गुण देता हूं आपको, गुण देता है परमात्मा, तो उन्हीं गुणों के अनुसार व्यक्ति सत्कर्म करता है। अभी तो हम गुणों के अनुसार नहीं कर रहे ना, तो फिर दुष्कर्म भी होते, कभी अभिमान का अभिमान प्रेरक है, कभी क्रोध प्रेरक है, कभी ईर्ष्या प्रेरक, कभी ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध, ये सब प्रेरक। कभी हम चोरी करते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, स्वार्थ प्रेरक, तो चोरी करनी पड़ती है, बड़ा बनने का मन है तो चोरी करनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है, रिश्वत लेनी पड़ती है, इत्यादि इत्यादि। सद्गुणों से सत्कर्म होते हैं और सत्कर्मों से सदगति होती है, दुर्गुणों से दुष्कर्म होते हैं और दुष्कर्मों से दुर्गति होती है। सो सेज गीता जी, 16वां अध्याय गीता जी का घोषणा करता है। अतएव सदक्षिण करपथ प्रार्थना आप सबसे, मन को इस प्रकार से सिधाइएगा, संत की संगति कभी पीछे नहीं हटना, आप नहीं जानते कितनी अनमोल है, मात्र उसकी उपस्थिति कितना कुछ दे जाती है। जस्ट लाइक ए ब्लॉटिंग पेपर, हम बिखरी हुई स्याही, जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है, वह बिखरी हुई सारी की सारी स्याही जितनी मर्जी हो उसको ब्लॉट चूस कर लेता है, ठीक इसी प्रकार से सच्चे संत की उपस्थिति है, न जाने वह क्या कुछ चूसता है साधकों का। सत्संगति प्रथम, ये कैसी प्राप्ति होगी, सत्संगति से, किसी संत का संग मिले पीछे नहीं हटना, हजार किलोमीटर चल के जाने की जरूरत पड़े तो चल के जाना, लाभ आपका है। भरत जी महाराज अयोध्या से चित्रकूट जाते हैं अपना दुख दूर करने के लिए, क्यों दुख मुझे है तो दूर करने के लिए भी मुझे ही प्रयत्न करना पड़ेगा, मुझे ही जाना चाहिए, मैं उन्हें क्यों बुलाऊं, दुख मेरा है, मुझे दूर करवाना है, तो जिससे दूर करवाना है मुझे उसके पास जाना चाहिए, ना कि मुझे उसको अपने पास बुलाना चाहिए जैसे हम करते हैं। اس لیے پھول لاف نہیں ہوتا. سنت کے پاس جاؤ, اس کی سنگتی کرو, ست سنگتی سے جو لابھ ہوتا ہے. دروپدی ننگے پاؤں ایک سنت کے پاس گئی تھی بھوجن کا نمنتھن دینے کے لیے. سنت نے کہا میں دکشنا میں 1000 اشویک شک کی دکشنا لوں گا تب بھوجن کروں گا. سن رہے ہو, 1000 اشویک, کھانا کھانے کے بعد آپ دیتے ہو نا دکشنا دیتے ہو, 1000 اشویک کا پھل, یگ کا پھل لوں گا تب بھوجن سویکار کروں گا. دروپدی پڑھی لکھی کنہیا کی پریہ, کانا کی بہت پیاری, بہت سمجھدار ہے. کہا مہاتما شاستر کہتا ہے سنت کے درشن کرنے جاؤ ہر پگ پر ایک اشمیک پھل, ایک اشمیک یگ کا پھل ملتا ہے. سچے سنت کے درشن کرنے کے لیے جاؤ ننگے پاؤں ہر پگ پر ایک اشویگ یگ کا پھل ملتا ہے. میں بہت پگ چل کے آئی ہوں, آپ اپنی دکشنا ابھی کاٹ لیجیے گا, باقی مجھے دے دیجیے گا. ستسنگتی سمرن, سدگتی چاہتے ہو نا, موکش چاہتے ہو, ایسی نہیں چاہتے حالت ایسی ہو, کیلا نہیں بننا چاہتے, بھوت پریت نہیں بننا چاہتے, سدگتی چاہتے ہو, پرماتما کا دھام چاہتے ہو, پرماتما کا پیار چاہتے ہو, تو یہ تین باتیں اپنی زندگی میں اتاریے گا. ستسنگتی سنت کا سنگ, سکر سنت کا سنگ, سمرن دو باتیں. بچے لوگوں یاد رکھنا بیٹا, گھر جا کے کہیں نوٹ کرنا, ستسنگتی پرتھم, دوسرا سمرن, اور تیسرا جیون سداچاری جیون ہونا چاہیے, وتر جیون ہونا چاہیے. پھل پوتر چاہتے ہو تو پھر کرنی بھی پوتر ہی ہوگی, جسے سداچار کہا جاتا ہے. ان تین کے بعد کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, سب کچھ ان تینوں میں آ جاتا ہے. تو سب جب یہی سماپت کرنے کی اجازت دیجیے گا, اگلے رویوار کو پرمیشور کی بات کریں, اسی پرکار کی کچھ چرچا کریں گی, تاکہ یہ موہ ہمارا مٹنا چاہیے. پتر موہ, پتری کے پرتی موہ, دھن کے پرتی موہ, یشمان کے پرتی موہ, عجیب سا موہ, دوسروں کو دکھ دینے کا موہ, دوسروں کو دکھ دینے کی واسنا, اگلے رویوار کو کریں گے چرچا. اس بات کی آج یہی سماپت کرنے کی اجازت دیجیے گا. بھکنوں ابھی سرسوتی مدی پرماتمی شری رامائن بولا جاتا ہے اس موقع پر, اس کے بعد ایک اور چیز بولی جاتی ہے, آتے بھی رام بول لو جاتے بھی رام بول لو. یہ صرف آپ کو سنانے کے لیے نہیں ہے, یہ اس لیے ہے کہ آپ ایسا کرو, گھر سے چلو رام رام بولتے بولتے چلو, واپس جاؤ گھر تک رام رام بولتے جاؤ. یہ آپ کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ یہ ہمیں کرنا ہے. ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے پرارتھنا ہے, کیجیے گا ایسے, لابھ آپ ہی کا ہے, بھلا آپ ہی کا ہے, کلیان آپ ہی کا ہے, شبھ کامنائیں, منگل کامنا.